मुरली में प्रश्न है, स्वर्ग की टिकट ली है?
टिकट
स्वर्ग अर्थात स्वर्ग अर्थात
पहले
पहले सुख का दरवाजा खुला
गेट
स्वर्ग के लिए तो माया मैं समझी स्वर्ग अर्थात सुख का दरवाजा खुला। दुख कब होगा? मुरली में आज की
मुरली,
आज की मुरली, आज की मुरली। यदि मोह है और लगाव है तो दुख होगा। पार्टियों से मुलाकात उड़ीसा ग्रुप में आपने पूछा स्वर्ग की टिकट ली है क्या? स्वर्ग अर्थात दुख का दरवाजा खुला और दुख का दरवाजा बंद। दुख नहीं है तो रोना भी बंद, दुख नहीं है तो दुख का कारण क्या बताया बाबा ने आज? मोह और दूसरा लगाव। जहाँ मोह है जहाँ लगाव है वहाँ दुख है। क्यों?
बंद जाता है ना,
बंद जाता है,
बंधन में तो दुख है,
बंधन में दुख, लगाव में दुख। लगाव रहित अवस्था जो है वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। फील वस्तु से लगाव है, किसी व्यक्ति से आसक्ति नहीं। तो लगाव और आसक्ति से मुक्त अवस्था बहुत सुंदर अवस्था।
आप इधर
पकड़ना पड़ता है लगाव रहित अवस्था जो है वो ऐसी अवस्था है दुख से मुक्त अवस्था है, बेहद की अवस्था है, श्रेष्ठ अवस्था है। बाबा ने कहा दुख तब होता है जब लगाव है या मोह है। किसी व्यक्ति में अगर मोह है तो आत्मा बंद हो जाती है, सब कुछ उसी में अनुभव होने लगता है, आसपास का जो भी है वो सब व्यर्थ लगने लगता है, सारा कुछ उसी में समाया हुआ है, ऐसा अनुभव होने लगता है, सारे सत्य उसी में भासते हैं, बाकी जो भी है वो कुछ नहीं है, बस वही सब कुछ है, निरर्थक लगने लगता है। और ये जो अवस्था है वो स्थिर अवस्था नहीं है योगी की, ये रुग्ण चित्त की अवस्था है। प्रेम स्वस्थ चित्त की अवस्था है, ये प्रेम नहीं, ये एक ही व्यक्ति से है, ये मोह है, तो ये एक रुग्ण दशा है चित्त की। अगर उस व्यक्ति को कुछ होता है तो हमको कुछ होता है, वो दुखी तो हम दुखी, वो अस्वस्थ होता है तो हम अस्वस्थ होते हैं, उसको वो संकट में है तो हमारे प्राण उस संकट में चले जाते हैं, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। इसके लिए बाबा ने कहा है दुख यदि दुख तब होता है सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहो, ऐसे कहा ना, सदा अपने भाग्य के गुण गाते रहो, अगर दुख होता है तो उसका कारण है लगाव और मोह। तो जन्म जन्मांतर के लिए बाबा ने तुम्हें भाग्य दिया है तो रोना बंद, अगर दुख है तो रोना होगा, अगर दुख ही नहीं तो रोना बंद। इसके लिए स्वर्ग को क्या कहा, स्वर्ग अर्थात सुख के दरवाजे खुल जाए और दुख के दरवाजे बंद हो जाए। रोने के तो कई कारण है, बहुत सारे कारणों से रोना आता है, कोई भी विकार की अधिकता हो तो अंततः आत्मा दुखी होती है, और जब आत्मा दुखी होती है, उदास होती है, विषाद में गिर जाती है तो उसमें रोना आता है। दुख एक ऐसी अवस्था है कि आत्मा को रोने पर मजबूर करता है, रोने तो एक अभिव्यक्ति मात्र है दुख की अवस्था की, वो बाहरी अभिव्यक्ति है, पर आंतरिक जो हो रहा है वो दुख है। तो ये स्वर्ग के लिए कहा था, गीत क्या था,
प्राप्ति धोखा
ये सब से दुख होता है, कई सारे कारण है दुख संसार में। और जो दुख अगर ये दुख से ही आत्मा को अध्यात्म में उन्नति भी होती है, जब ये ज्ञान हो जाए कि संसार में दुख ही केवल है, वही आत्मा के लिए टर्निंग, उस दुख का भी हम लाभ ले, हर चीज का लाभ लेना है। जैसे चित्त चंचल है ऐसा कहा जाता है ना, ये चित्त बहुत चंचल है और लोगों ने इस चित्त चंचल चित्त को बहुत गालियां दी है, परंतु चित्त का चंचल होना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो चंचल ना होता तो एक ही स्थान पे फंसा रह जाता, वो चंचल है। हर बात से लाभ उठाना है ब्राह्मण आत्मा को कष्ट नहीं
होता भी है, वो बाबा कृष्ण
बाबा ने उस वरदान था ना कि कष्ट होता है तो वो कष्ट में ही बाप याद ज्यादा आता है, इसके लिए जो दुख है उस दुखों का लाभ उठाओ, चित्त चंचल इस चंचल चित्त का ही लाभ उठाओ, हर चीज का लाभ उठाओ, जो भी संसार में दिख रहा है उन सब से हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है, बजाय इसके कि उसको गाली दे उससे लाभ उठाना। संसार में दुख है, वो दुख में ही तो बाप की याद ज्यादा आती है। इसके लिए महाभारत में दिखाया ना, श्री कृष्ण ने पूछा कुंती को क्या चाहिए तुमको, तो कुंती ने क्या कहा, मुझे केवल दुख दो ताकि मैं निरंतर तुमको याद कर सकूं। कितना दुख आत्मा होती है, दुख के समय ही तो परमात्मा की याद आती है, जब सुख होता है तो भगवान की याद आती है कि आत्मा को नहीं आती है, वो तो खोया रहता है अपने आप में। जब दुख होता है, जब धोखा होता है, जब निंदा होती है संसार में, तो कहीं चित्त परमात्मा की ओर बढ़ता है।
दुखी सुख का
ज्ञान, दुखी
दुखी सुख का ज्ञान,
दुखी सुख का ज्ञान है।
अच्छा, दुखी सुख का ज्ञान।
तो आज बाबा ने क्या कहा, कहाँ से चालू करें, शुरुआत से या आखिरी से? शुरुआत से चालू करते हैं। टीचर से मुलाकात, क्या कहा टीचर्स को बाबा? मनोज भाई रुको, टीचर्स को क्या कहा बाबा ने, बोलो बोलो, याद करो, कुछ तो अच्छी अच्छी बातें हैं उसमें। क्या कहा?
टीचर्स को खास एक बाबा और एक बाबा की सेवा।
टीचर्स को लिफ्ट और गिफ्ट, दो चीजें बोलिए। ये जो गिफ्ट है, कैसी गिफ्ट है? नेचुरल गिफ्ट है, नैसर्गिक सौगात बाप ने दी है। कौन सी गिफ्ट दी है? एक ही बाप है और एक ही सेवा है, एक ही एक के प्रति सेवा। गृहस्थियों को दो काम है, यहाँ एक ही काम है, तो एक काम है तो अच्छा करना चाहिए ना। बहुत सारे काम है तो उसमें गड़बड़ की संभावना ज्यादा है, यहाँ तो एक ही काम है, एक को ही याद करो और एक ही की सेवा करो। और उसमें भी गिफ्ट कौन सी कही बाबा ने, कौन सी गिफ्ट प्राप्त है उनको? डबल लाइट भी किस आधार से? निमित्त भाव, निमित्त भाव रखना, निमित्त भाव मैं नहीं कर रहा हूँ, वो करा रहा है, करण करावन हार करा रहा है। ये जो केवल कहने मात्र नहीं, इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति, इसकी गहन अनुभूति कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, कर वो ही रहा है, अगर वो हट जाए तो हम कुछ नहीं है, ये अनुभूति। तो निमित्त भाव से ही क्या होगा, डबल लाइफ स्थिति होगी। निमित्त भाव से ही मेहनत कम सफलता ज्यादा होगी, डबल लाइट स्थिति। विजय भी बाबा ने उसमें जोड़ दिया, निमित्त भी उसमें जोड़ दिया, करण करण हार करा रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये भी जोड़ दिया। तो ये जो स्थिति है, ये इसको गिफ्ट भी कहा और ये लिफ्ट भी है, दोनों चीजें है ये। और फिर और क्या कहा बहनों को बाबा ने? सहज एक परिस्थिति हो सकती है उनकी, एक 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 बात, एक की सेवा, सहज एक परिस्थिति, एक की याद, एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध, एक बाप दूसरा ना कोई, एक की छत्र छाया में, एक की याद, एक से सर्व खुशी, एक से सर्व प्राप्तियां, एक से सर्व आनंद जीवन के, एक में ही संसार समाया हुआ, एक ही आधार, एक ही अवलंबन, एक ही बल और एक ही भरोसा, सब कुछ एक 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 का पाठ पक्का है, सारे रिश्ते संबंध जो भी है सब कुछ एक। तो बाबा ने कहा निमित्त भाव, अभी चिंतन का विषय ये है कि निमित्त भाव जीवन में कैसा लगा।
अगर बात भी करना तो
बात करते हैं तो कौन सी बात करते हैं, बाप का परिचय देते हैं, बोलते भी है, कर्म भी करते हैं, तो जो कर्म के लिए सेवा के लिए बाप ने निमित्त बनाया है वो सेवा करते हैं। तो दोनों चीजें, बोलना, करना, सोचना, सुनना, सब कुछ जैसे कि सेवा है उसमें, हर चीज में। टीचर्स अर्थात सभी टीचर्स है भवन, सब एक तो वो भी है जिससे मुलाकात कर रहे हैं, परंतु टीचर तो सब है ना, सच्चे सच्चे राजयोगी बच्चे अर्थात मीठे बच्चे, राजयोगी बच्चे अर्थात जो पढ़ना और पढ़ाना, महावाक्य था ना, पढ़ना प्रश्न था ना, पढ़ना और पढ़ाना, तो राजयोगी अर्थात पढ़ना और पढ़ाना, तो टीचर्स। तो निमित्त भाव को कैसे लाए?
निमित्त भाव को एक बोलते हैं, जैसे इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं ना उसको
इंग्लिश में,
तो बोलते इंस्ट्रूमेंट हारमोनियम है, तो वो कुछ नहीं, उस पर अंगुली उसको ये करना, तो कराने वाला वो करता है, हारमोनियम कुछ नहीं करता,
हारमोनियम कुछ नहीं करता,
सिर्फ स्ट्रिंग ये चाहिए, टाइट चाहिए।
एक तो ये उदाहरण, दूसरा उदाहरण की कठपुतलियां है, हाथ ऊपर कंट्रोल ऊपर, हम तो खाली नाच के ऊपर। स्वयं को निमित्त समझना, स्वयं के अंदर अहंकार ना आ जाए कि ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ।
एक्चुअली ये भी एकदम लास्ट स्टेज में
हो, ये बहुत ही सूक्ष्म अवस्था है निमित्त भाव। केवल कहने मात्र नहीं है कि हम तो निमित्त है, बाबा करा रहा है, ऊपर ऊपर से बाबा बाबा, अंदर अंदर मैं, ऊपर से बाबा ही सब कुछ करा रहा है, ऊपर से मैं ही सब, अंदर से मैं ही सब कुछ करता हूँ, मैं नहीं होता तो ये सेवा नहीं होती। ये जो भाव है कि वो ही करा रहा है, इसकी स्पष्ट अनुभूति कि हम कुछ नहीं कर रहे, ऐसे स्थिति जो है उसमें जो कर्म होंगे वो निस्वार्थ कर्म होंगे, अनासक्त कर्म होंगे। वो कर्म करने के बाद उनकी स्मृति भी नहीं रहेगी, उनकी याद भी नहीं रहेगी, ये हमने किया, किया और भूले, किया और भूल गए, कोई स्मृति नहीं, ना ही कोई इसका उल्लेख, ना उसकी कोई चर्चा, ना उसका कोई वर्णन, कुछ नहीं, नो डिस्क्रिप्शन, ऐसी निर्लेप अवस्था। सेवाएं कर ली, महान सेवाएं कर ली, परंतु उसका कोई, जैसे कि हमने कुछ किया ही नहीं, हमको पता भी नहीं, ना ही याद है क्या किया। निमित्त एक तो ये, दूसरा करते करते भी यह स्मृति की, जैसे अंदर से एक दूसरा ही लक्ष्य है, अंदर से लक्ष्य है कि बार बार अशरीर होना है, अंदर से लक्ष्य बहुत ऊंचा रखा हुआ है, ऊपर से सेवाएं कर रहे हैं, तो वो सेवाओं में हम लिप्त नहीं हो रहे, क्योंकि हमारा अंदर से लक्ष्य कुछ और ही है। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सेवाएं में लापरवाही है, ये बड़ी अद्भुत अवस्था है कि जिसमें अंदर से हम संपूर्ण, अंदर से पुरुषार्थ चल रहा है, बार बार अंदर से खींच है योग की, बाहर से अंदर से खींच है, अशरीर भी हो जाए, अंदर से खींच है, जैसे आधा घंटे की सेवा है और पांच मिनट गैप मिल रहा है, तो जैसे वो आधे घंटे की सेवा में हम, वो बहुत बुद्धि का काम है उसमें, अगर बहुत बुद्धि का काम है तो वहां बाप की याद नहीं हो सकती, वहां बुद्धि लगानी है। पर जो तुरंत पांच मिनट मिले उसमें तुरंत हम अशरीरीपन का अभ्यास या तुरंत याद में स्थित हो रहा, पर ये तब होगा जब वो आधा घंटा खींचेगा, वो तब होगा जब अंतर्मुखी अवस्था होगी, जब मौन की अवस्था होगी, कर्म में, कर्म में मौन, कर्म में अंतर्मुखी अवस्था, और कर्म में जैसे खींच, ताकि उधर वो कब अवसर मिले और कब अशरीर बनू और कब याद करूं। एक दूसरी अवस्था है बाह्य मुखी अवस्था, एक दूसरी अवस्था है बहुत बोल वाली अवस्था, उसमें विस्मृति की अवस्था है, उसमें अगर गैप मिल जाता है पांच मिनट तो वो याद नहीं करेगा, उस समय कुछ और करेगा। ऐसी आंतरिक अवस्था हो तो निमित्त भाव है, जितना चित्त शांत है, अंदर जागरण की अवस्था है और मौन है, उतने ही कर्म श्रेष्ठ होंगे। बुद्धि के कर्म भी हो तो भी जो बीच में जो गैप मिलेगा उसमें आत्मा तुरंत स्थित हो जाएगी अशरीर अवस्था में। ऐसे डिटैच्ड कर्म जो है वो निमित्त वाले कर्म, जैसे बाबा के जो कर्म है वो आ रहा है, एक अद्भुत समन्वय है उसमें बाबा के, इतने संपूर्ण प्रेम है एक तरफ और संपूर्ण अनासक्त भी है एक तरफ, तो उसका जाने का जब समय आता है तो ऐसा चला जाता है किसी से कोई लेना देना नहीं, वो बीच में से कभी भी जा सकता है, उसको ऐसा भी नहीं कि इतने लोग हैं तो मैं रुकूं, कभी भी जा सकता है, उसको इतना डिटैचमेंट है अंदर से, संपूर्ण डिटैच्ड है, किसी से कोई लेना देना नहीं, और दूसरी तरफ बच्चों को देखने बगैर बाप रह नहीं सकते। ये मिलन कैसा है, अलौकिक मिलन है, ये अमर मिलन है, ये दिल का प्यार है, सच्चा प्यार है, मिट नहीं सकता, ये अविनाशी प्यार है। बाप हर बच्चों का दिल में मिलन मनाते रहते हैं, एक एक बच्चे के प्यार का वर्णन करे तो न जाने कितनी किताबें, ग्रंथ, उपन्यास और लव स्टोरी लिख सकते हैं। ये रह नहीं सकते, देखे बिना रह नहीं सकते, हर एक बच्चा बाप के दिल में है, बाप किसी बच्चे को भूला हुआ नहीं है। एक तरफ संपूर्ण प्रेम और दूसरी तरफ संपूर्ण अनासक्त स्थिति कि किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो मेहमान बनकर आता हूँ बस, बड़े से बड़ा मेहमान, गेस्ट ऑफ ऑनर। एक तरफ तो ये जो अवस्था है ये केवल कल्पना मात्र नहीं, बाबा ने आज की जो मुरली चलाई है उसका वो स्वयं उदाहरण है, जो उसने कहा ना तीन बातें, एक तो किसी आत्मा के क्या करो, किसी आत्मा के क्षमा, दूसरा महिमा, और तीसरा शिक्षा, क्षमा शिक्षा, क्षमा महिमा और शिक्षा, ये जो तीन बातें कही है किन आत्माओं के लिए? कड़े संस्कार वाली आत्मा है, कम बुद्धि वाली आत्मा है, पत्थर बुद्धि वाली आत्मा है, अवगुण वाली आत्मा है, ग्लानी करने वाली आत्मा है, ब्राह्मणों में पुरुषार्थहीन आत्मा है और अज्ञानी और पतित आत्मा है, कमजोरी और बुराई धारण करने वाली आत्मा है, अवगुणधारी आत्माओं के लिए उसके उसने ये तीन बातें कही कि सबसे पहले क्षमा, फिर उनको महिमा और शिक्षा। जो वो बोल रहा है ना उसका वो स्वयं स्वरूप है, जो उसने कहा है मुरली में उसका संपूर्ण प्रत्यक्ष उदाहरण आदर्श वो खुद है, क्योंकि वो खुद ही ऐसा ही करता है। उसने उसकी मुरलियों में क्या आता है सबसे पहले तुम कौन हो, फर्स्ट पैराग्राफ किसी भी अव्यक्त वाणी का, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम हाईएस्ट हो, तुम होलीएस्ट हो, तुम रिचेस्ट हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है इस दुनिया में। और फिर बाप को बहुत हर्ष होता है, पर बाप को रहम भी है क्यों? जब बच्चे को देखते हैं किसी किसी की ऐसी हालत है, दो प्रकार दिखते हैं, पहले नहीं दिखते, पहले तो हर्ष होता है, फिर दो प्रकार, फिर ऐसे करो, फिर वैसे करो,
सबसे लास्ट में आता है
वो सब धीरे धीरे आता है, फिर धीरे धीरे। तो पहले महिमा करते हैं, फिर समर्थ बना के, पहले हल किसान है वो एकदम अच्छा श्रेष्ठ किसान, आदर्श किसान है, जो पहले किसका हल चलाता है, उमंग और उल्लास का हल चलाता है, फिर बीज डालता है तो फिर सफलता होती है। कल राठी जमीन पर वो बीज नहीं, हल नहीं चला, बीज नहीं डालता है, जो कि संस्कारों के वश है, जो कि कमजोर है, ऐसी ऐसी ऐसा जो व्यक्ति है उसको कलराठी कहा जाता है, उसमें वो नहीं करता है। तो आज की मुरली कहाँ से शुरुआत की है बाबा ने? कौन किसको देख रहा है? बाबा क्या देख रहा है? सभी आत्माओं को अपने संपन्न स्वरूपों में देख रहा है और विश्व कल्याणकारी स्वरूपों में देख रहा है। वो देख ही कैसे रहा है, उसकी दृष्टि देखो कैसी है। वो सबको उस रूप में नहीं देख रहा है कि जिस रूप में वो अभी है, वो उस रूप में देख रहा है जो उनका वास्तविक रूप है, जो बाबा ने कहा ना शिक्षा के समय कि अपने उनके आत्माओं के अपने वास्तविक स्वरूप को देखो, उनके वास्तविक गुणों को देखो, अभी की कमजोरियों को न देखते हुए उनके वास्तविक स्वरूप को देखना, तो उनमें महिमा से उनको महान बनाना, महिमा गाते करते करते ही उन्हें महान बनाना। मुरली का पहला ही वाक्य क्या है कि बाप किसको देख रहा है? संपन्न स्वरूप और विश्व कल्याणकारी आत्माओं को देख रहा है। हरेक ये जो विश्व कल्याणकारी स्थिति एक ऐसी स्थिति है, ये अंतिम स्थिति है बाबा ने कहा, अंतिम अवस्था भी है, ये अंतिम स्वरूप, अंतिम कर्तव्य है आत्माओं का, और सब यथा शक्ति पुरुषार्थ कर रहे इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। परंतु बाप जैसे बेहद विश्व कल्याणकारी है, वैसे बच्चे क्या है? स्व कल्याण में लगे हुए, अपने स्वदेश कल्याण में लगे हुए, विश्व कल्याण का विश्व कल्याण एक ऊंची रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारे विश्व का सोचना, केवल अपना सोचना नहीं, पर इसके विरोध में भी एक है कि विश्व का तो सोच ले पर आसपास वाले उनके प्रति रहम दिल नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम, ये भी बाबा ने कहा हुआ, हम दूर की अज्ञात आत्माएं उनको सुबह सुबह सकाश देते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय नहीं है, पर जो आसपास वाले हैं उनके प्रति उनके प्रति रहम थोड़ा कम है, उनके प्रति शुभ भावनाएं थोड़ी कम है, वो अगर थोड़ी सी भी गलती करे तो हमको तुरंत लगता है इसने ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके लिए बाबा को चार पांच बातें, उसमें एक पॉइंट क्या, कम बुद्धि वाली आत्मा, कम बुद्धि वाली, ऐसा कोई आ जाए हमारे साथ सेवाधारी कि जिसको एक ही बात 10 बार तो बताइए फिर भी गलती करता है, उसके प्रति रहम कैसे रखें, वो बड़ी बात है। थोड़ी कोई आ जाए किचन में, उसको 10 बार सिखा दिया जाए कि खिचड़ी ऐसी बनाई जाती है, फिर भी वो कभी पानी ज्यादा डाल देता है, कभी चावल, कभी दाल ज्यादा डाल देता है, कभी कुछ कर देता है, हजारों बार बताने के बाद भी, तो उसके प्रति कौन सी भावनाएं रखी। हम सुबह सुबह अमृत वेले विश्व की सारी दुखी आत्माओं को और अशांत आत्माओं को सकाश देते, उनके प्रति रहम दिल, पर ये जो डिपार्टमेंट में ही है जो आत्मा, उसका क्या? उसको क्रोध आता है, उसको कितनी बार समझाया ये बताना, उसके बाद सुधरता नहीं, ये भी बाबा ने इसको क्या कहा आज, बहन ये तो बदलता नहीं, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, 10 साल से देख रहे बदलने के चिन्ह नहीं है इसके, वहम अर्थात शक, झूठा शक को वहम कहा जाता है, संशय, सस्पिशन, डाउट।
रियल स्वरूप पर अपना ट्रस्ट,
तो वो एक तो है ये खाली थियरी मुरली पढ़ना, एक है प्रैक्टिकल। वही तो कह रहा हूँ ना कि दूर की आत्माओं के प्रति हमारी बहुत रहम की भावना है, पर जो नजदीकी है, कम बुद्धि वाली आत्मा है, कम बुद्धि है जिनको, उनके प्रति रहम दे। ये थोड़ी ऊंची अवस्था है बाबा ने कहा। पुरुषार्थहीन आत्मा है, जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हमारा चिंतन बढ़ते जाता है, जैसे जैसे हमारी योग की स्थिति बढ़ती जाती है, उन आत्माओं के प्रति जो बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं करते, सूक्ष्म घृणा उत्पन्न होती है मन में। जैसे कोई हमारे ही कमरे में है जो बिल्कुल अमृत वेला उठता नहीं, कभी उठता है कभी नहीं उठता है, तो उसके प्रति निरंतर शुभ भावना नहीं रहती है, थोड़ी कम होती है। जो ज्ञान और योग में जिनको रुचि कम है और बाकी बातों में ज्यादा लगे हुए, ज्ञान और योग नहीं है परंतु ज्ञान के ऊपर ऊपर से ज्यादा बात करने वाले, उनके प्रति शुभ भावना थोड़ी सतही कम हो जाती है। ऊपर ऊपर से दिखावा करने वाले, आगे आगे करने वाले, ज्ञान योग कुछ नहीं पर आगे आगे करने वाले, बाबा के इर्द गिर्द घूमने वाले स्टेज पर।
बात ऐसी है, जेलसी होती है,
वो कोई भी भाव चाहे जेलसी का भाव है,
नहीं इंटेलिजेंट भी है, दोनों भी इंटेलिजेंट है और अच्छे भी है, लेकिन कुछ ऐसा एक दो का, एक दो को प्रिय नहीं है, नाराज है एक दो से, और डिपार्टमेंट में
किसी भी रीति से चाहे वो नाराज भी है,
कितना भी आप करो तो भी उनका इकट्ठा नहीं होता, मिलन नहीं होता, तो हमको क्या करना, नहीं हम योग बल देते, योग बल देते, माना मैं शुभ भावना देती, एक माँ जैसी प्यार करूं और शुभ भावना देऊं और इस तरह से बेहद प्यार से और शुभ भावना से, लेकिन वही बात रोज होती, तो मैं स्पष्ट मना ऐसा नाम नहीं,
इसीलिए करते हैं आपके
हमको क्या करना है, ये प्रैक्टिकल अभी
हमको सभी के प्रति
रहम भी करूं, प्यार भी करूं और दोनों को भी रिस्पेक्ट दूं, लेकिन डिपार्टमेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो बनाना है ना, वहाँ बैठकर तो मुझे क्या करना है।
सबसे पहले तो अपनी स्थिति,
मैं प्रैक्टिकल में पूछती हूँ,
सबसे पहले तो हमको, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस संसार में हमारी स्थिति, अपनी स्थिति से बड़ा इस संसार में कुछ नहीं। बाबा ने कहा है कि शरीर चला जाए पर खुशी ना जाए, शरीर की, शरीर से भी ज्यादा मूल्यवान, शरीर से भी ज्यादा कीमती हमारी खुशी है, हमारी खुशी हमारी स्थिति की कीमत 1 करोड़ है, बाकी हमसे कोई संतुष्ट है नहीं है वो सब बात की बातें है। विश्व कल सबसे पहला जो कार्य है हमारी श्रेष्ठ स्थिति, चाहे हमारी कोई आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमको सबसे महत्वपूर्ण है अपनी स्थिति, क्योंकि आप अगर हलचल में हम अगर आ गए तो फिर सब गया, फिर कुछ नहीं रहेगा, ना ज्ञान रहेगा, ना योग रहेगा, ना शुभ भावना रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। कोई कहता है ना, जब आपकी कोई आलोचना करता है, जैसे कोई व्यक्ति था जिसकी सब लोग निंदा करते थे परंतु किसी ने उसे कभी विचलित होते हुए नहीं देखा, एक नॉर्मन विंसेंट पील करके ऑथर है, बहुत फेमस विदेश में, उसकी किताब में है,
तो वो बढ़ानी चाहिए।
हाँ, तो वो कहता है कि एक व्यक्ति है कि जिसपे कई लोग उसकी निंदा करते, आलोचना करते, तो उसके पूछा गया तुम कभी विचलित क्यों नहीं होता है, तो ये बहुत ही साधारण सी बात उसने कही कि जब कोई उंगली उठाता है, प्रहार करता है, तो एक ही तो उंगली उधर रहती है, बाकी 3 उंगलियां तो अपनी तरफ है ना, बड़ा प्रहार तो अपने आप पर कर रहा है, तो मैं रहम से भर जाता हूँ जब कोई मेरी निंदा करता है, क्योंकि वो 3 उंगलियां उनकी अपनी तरफ है, मेरी तरफ तो एक ही है, तो ज्यादा प्रहार तो वो आत्मा खुद को गिरा रही है मेरे से ज्यादा, तो ये बात। तो चाहे कैसी भी आत्मा हो, चाहे कुछ भी कर रही हो, हमारी उनके प्रति शुभ भावना कम ना हो, बस इतना हमको ध्यान रखना, उनके प्रति कोई निगेटिव संकल्प नहीं, उनके प्रति नकारात्मक किसी भी बात की कोई ये नहीं, उनके प्रति शुभ भावना थोड़ी, हमारी सम्मान कम हो जाता है इस तरह की जो आत्मा होती है, बार 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 एक ही आत्मा बार बार एक ही गलती कर रहे हैं। जैसे कहा ना बाबा ने कम बुद्धि शब्द यूज किया, अभी उसकी बुद्धि ही उतनी है तो क्या कर सकते हैं, बुद्धि उतनी है उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसको भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। इस ड्रामा में बहुत सी बातें जो बदली नहीं जा सकती उनको स्वीकार करना, ये एक बहुत बड़ी कला है जीवन की, टू एक्सेप्ट थिंग्स विच वी कैनॉट चेंज। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते, ऐसी बहुत सारी बातें जीवन में जिसको हम नहीं बदल सकते, या फिर वो बदलेगी अपने समय, किसी एक आत्मा से हमको छूटना है। हम नहीं छूट सकते जब तक उसका और हमारा हिसाब किताब पूरा नहीं होता। एक समय आएगा कि स्वतः ही वो चली जाएगी, वहां से स्वतः ही चली जाएगी, हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा। और अगर हम करने की कोशिश हम करते हैं, उसका विरोध करने का, निंदा करने का, क्रिटिसाइज करने का, उसको डिफेंड करने का, उसकी आलोचना निंदा करने की, उसके कंप्लेन करने की, कुछ भी हमारा जो भी प्रयास है, सबसे ज्यादा दुखी हम ही होंगे। जैसे सेंटरों में कुमार होते हैं ना, वो विरोध करते हैं ना, संगठन बनाते हैं, वो सब करते हैं वहां पर, क्यों करते हैं, पर कटता कौन है, वही कटता है, उधर किसी को कुछ नहीं होने वाला है, वो बस वो इधर से गिरा उधर गिरा, वो उसके ऊपर मारो या वो ऊपर से गिरा चाकू के ऊपर, कटेगा कौन, वो वाली बात है। तो बाबा सबको विश्व कल्याणकारी स्वरूप में देखना चाहते, देख रहे हैं, संपन्न स्वरूप में भी देख रहे हैं, स्व पुरुषार्थ स्व कल्याण या देश कल्याण में लगे हुए जो है वो
बेहद,
इसमें नहीं लगना, उसमें बहुत थोड़े हैं जो बेहद बाप समान जिनकी विश्व कल्याणकारी है। तो बाबा ने उनकी कुछ निशानियां बताई है, सबसे पहली निशानी
जानते हैं,
क्या जानते हैं वो,
समय
बहुत कम है और कार्य महान है, उनको समय की पहचान है, बार 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 स्वयं को स्मरण कराते हैं कि ये कौन सा समय चल रहा है, ये समय को वरदान है, ये वरदानी समय चल रहा है, अलौकिक समय है ये, अलौकिक युग है ये, युग समाप्त तो वरदान समाप्त, पिछले संडे मुरली में था ना, युग जिस समय समाप्त हो गया वरदान समाप्त हो जाएगा, तो समय कौन सा है, समय की पहचान, तो समय को जानते हैं और दूसरा क्या जानते हैं,
कर्तव्य
महान है, हमारे जो कर्तव्य है, हमारे जो कार्य है, जो ड्यूटी है, जो फर्ज है, वो महान है, इसकी निरंतर स्मृति, और इस आधार से क्या करते हैं वो, अपना हर संकल्प और हर सेकंड विश्व सेवा में, विश्व सेवा के कार्य में लगाते हैं। समय और संकल्प, ये दो हमारे पास मूल्यवान चीजें हैं, हमारा मन में उठने वाला प्रत्येक संकल्प और हमारे पास जो समय है, हमारा समय ऐसा ही व्यर्थ ना चले जाए और हमारे संकल्प ऐसे ही व्यर्थ ना चले जाए। संकल्पों को महान बनाना और समय को वेस्ट ना करना, ये दो बातें। दूसरा पॉइंट, विश्व कल्याणकारी आत्मा अर्थात मन में संकल्प आ गए तो धन और तन, दो बातें यहाँ है, एक है तन, क्या करेंगे तन को, विश्व कल्याण अर्पित, शरीर को अर्पित करना अर्थात बाबा को दे देना, तो बाबा क्या करेगा, रखेगा नहीं, वापस दे देगा उसको, और दिव्य बनाकर दे देगा तुम्हारे पास, तो ये देह को अर्पण कर देना, अर्पण अगर कर दे तो उसमें थकान नहीं रहेगी फिर, अथक निरंतर, चौथा तीसरा पॉइंट वही है ना, अथक निरंतर ऑलराउंड एवर रेडी, चार बातें हैं वहां पर, अथक अर्थात जिसको थकान ना हो, निरंतर सतत ऑलराउंडर, किसी भी प्रकार की सेवा दे दो, आज ये कल वो कल वो कल वो कल वो, हर प्रकार की सेवा है, ना नहीं है उसमें, और एवर रेडी सदा तैयार बैठे है, जैसे क्या लगाए बैठे, हाथ लगाए बैठे, हर सेवा के लिए तैयार, नहीं तो एक होता है कि एक नेचुरल टेंडेंसी है कि कुछ भी कहो तो बहाने देना कि नहीं मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, ऐसा करना है वैसा करना है, इस तरह का एक है, जो कहा वो करो बस। मिलिट्री में एक नियम होता है, देर इज नॉट टू रीजन वाई, पूछना नहीं क्यों, देर इज बट टू डू एंड डाय, बस करो और मरो, मिलिट्री में ये हर जगह लिखा रहता है, इस तरह का वाक्य, देर इज नॉट टू रीजन वाई, पूछो नहीं क्यों, मिलिट्री में आदेश मिला अर्थात जाओ, अबाउट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, जिधर बोला उधर टर्न, ये नियम है मिलिट्री से, नॉट टू रीजन वाई देर इज बट टू डू एंड डाई. तो तन को समर्पित कर दिया और धन स्थूल धन बाप की अगर नहीं है कुछ ये भी तो उसके लिए क्या फिर जो कमाई नहीं करते वो कौन सा धन समर्पित करेंगे. नहीं नहीं हाँ सेफ्टी यहाँ आता है सेफ्टी के बाद लाइट चालू है लाइट बंद पानी ऐसे नहीं कि कोई देखता नहीं तो 10-12 बकेट ले ले पानी का इधर पानी नहीं मिल रहा है लोगों को तो हम तो हमारी तो आदत ही है पानी की बचत बिजली की बचत भोजन की बचत भोजन हाँ
ऐसा लगता ही नहीं
इकोनॉमी इसमें लाइट करंट बिजली आएगा एक सबसे महत्वपूर्ण पानी आता है उसमें सबसे और एक चीज और तीसरा आता है भोजन और भी कुछ है जिसकी बजट करनी है. हाँ जो कि पेपर
जैसे चिड़िया चढ़ सकते हैं तो लिफ्ट जाके जा रहे थे.
हाँ वही मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी बिजली का सारा कुछ आ गया. फिर बिजली से रिलेटेड जो भी चीज है जहाँ हम जरूरत नहीं है. कई लोग कमरे से निकलते बाथरूम का लाइट चालू ही रहता है जब शाम को जाते तो देखते लाइट चालू ही था खुला रह जाता है. ये जो छोटी छोटी बातें हैं पर बाबा ने कहा ये भी एक प्रकार के जैसे सूक्ष्म बोझ है या फिर अपने लिए बहुत खर्च करना
ट्रांसपोर्ट में
बहुत खर्च
गाड़ी है लेकर चला गया
ट्रांसपोर्ट भी एक चीज है सारी चीजें आती है उसमें ट्रांसपोर्ट महत्वपूर्ण जा सकते हैं पर फिर भी छोटी छोटी चीजों के लिए तो जहां हम बचत कर सकते हैं वहां बचत करें जितनी हो सके हमारे लेवल. दूसरा क्या कर रहा है दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है.
एक प्रकार ये है कि जैसे कि परहेज है परहेज से पड़े खाना भी खाते दवाई भी लेते.
अच्छा खुद ही अपने आप को बीमार
दोनों में
खर्च जिसको पता है कि ये खाने से मुझे ये हो सकता है सर्दी खांसी हो सकती है. अभी सर्दी खांसी भी हो गई तो अगर उसका ट्रीटमेंट अगर एक एक मेडिसिन कितना कॉस्टली है पता है सबको कितना मेडिसिन 3 गोलियां एक एक मेडिसिन 30-40 रुपए की एंटीबायोटिक अगर खरीदो तो 200 रुपए का एंटीबायोटिक होता है. अगर लूज मोशन हो गया बाहर प्राइवेट में एडमिट हो जाओ स्टर्लिंग में देखो उसका बिल कितना आता है रूम का बिल उसका बिल उसका बिल. एक दिन का आईसीयू का कॉस्ट 20,000-30,000 पर डे कॉस्ट. और ये जो पैसा यहाँ आ रहा है वो सेंटरों पे माता एक एक रुपया डालती है रोज जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है फिर भी डालती है एक एक रुपया उनके पसीने का है ये यहाँ जो आ रहा है तो उसका ये स्मरण रहे हमको ये कौन सा पैसा है. थोड़ा बहुत हम जानबूझ के बीमार ना पड़े कि जो हमको पता है कि भाई ये खाने से ये हो सकता है मुझे परंतु वो खाने का मोह इतना ज्यादा है कि टेस्ट ये पता नहीं मिलेगा कि नहीं बाद में जल्दी चलो चलो इससे पहले कि खत्म हो जाए. बहुत सारा संग्रह करना चीजों का अनावश्यक चीजों का 10-10 शूज है कभी यूज नहीं किए नया शूज मोबाइल कपड़े ड्रेसेस ये जो चीजें ना अगर बच जाती है तो सेंटरों पर दे दो ये सबसे अच्छा काम है. बहनों के हाथ में दे दो उसके सेंटर जो होंगे ना 2-3 कुमार क्योंकि सेंटरों पे गरीब गरीब कुमार होते हैं बहुत उनके पास कोई चाय की दुकान वाला कोई कुछ चलाने वाला इस तरह के बहुत गरीब होते हैं तो दे देना उनको वो बहन दे देगी क्योंकि डायरेक्ट हम दे तो वो अलग है हिसाब हिसाब उसकी याद आएगी वो बहन दे देगी बहन अपने हिसाब से जो करना है करे. बहुत उनकी अगर सेंटरों के कुमारों की लाइफ स्टाइल अगर देखा जाए तो बहुत कठोर जीवन है ये यहाँ के जैसा ये तो सुख स्वर्ग है जैसे यहाँ कपड़े वहाँ कपड़े रोज धोने पड़ते हैं वो भी बड़ी बात है परंतु वो कठोर जीवन है सुबह से लेके तपस्या एक रीति से खुद ही अपना भोजन बनाना दिन भर ड्यूटी करना रात में अपना भोजन बनाना फिर आकर कपड़े धोना कितनी बड़ी बात है एक एक चीज प्रेस करना भोजन बनाना प्रेस करना कपड़े धोना बर्तन ये सारी जो चीजें कठोर तपस्या है एक रीति से तो बहुत ज्यादा जमा करके रखना उनको दे दो जिसको जरूरत है दे दो दान करते जाओ। तो तन और धन, और जिनके पास धन है स्थूल धन, वो बाबा ने भी उसके लिए कई सारी चीजें बताई, सेंटर निर्माण या यज्ञ के कार्य में उसको लगाओ, वो भी समर्पित भाव से। और तन मन धन ये हो गया। तीसरा पॉइंट
कैसे भी
आत्मा नहीं, मस्तक और नैनों में क्या होगा,
स्मृति
और दृष्टि में सभी आत्माओं के और प्राप्त आत्माओं को तृप्त कैसे बनाया जाए, एक भिखारी आत्माओं को संपन्न कैसे बनाया जाए, जो वंचित आत्मा है उसको संबंध संपर्क में कैसे जाए, बाप से दिन रात वरदान जो लेते हो दूसरी आत्माओं को, शक्तियों का वरदान जो लेते हो दूसरी आत्माओं को दान कैसे करें, दातापन की जो स्टेज है, तो वंचित आत्माओं को संबंध संपर्क में लाना, भिखारी आत्माओं को संपन्न बनाना, अप्राप्त अतृप्त आत्माओं को तृप्त करना, ये हमारे महान कर्तव्य है। बाबा ने आगे कहा ना, ये सबसे बड़ा बिजनेस है तुम्हारा, ये सबसे बड़ी लॉटरी तुमको प्राप्त हुई है, बेहद की अविनाशी लॉटरी, बेहद की अविनाशी लॉटरी और सबसे बड़ा बिजनेस। तो जैसे बड़ा बिजनेसमैन होता है उसको अपना बिजनेस याद रहता है, अपना बिजनेस याद रहता है, तो हमें भी अपना बिजनेस याद रहे। कौन सा बिजनेस है हमारा, विश्व कल्याण करना। तो अपने बिजनेस में रोज देखो कि भाई ये हमारा विश्व के ये सब आत्मा, इसमें से कौन कौन वंचित है, कौन कौन भिखारी है। बाबा ने कहा ना, वो भिखारी वो अनजान वो बेचारे और अनजान तुम भाग्यवान, अभी कहा ना वो बेचारे है,
बेचारे
और तुम भाग्यवान। तो बाबा ने कहा विदेशियों से कहा ना, अपने परिवार की आत्माओं को अपना बनाओ, विदेशियों से कहा, जो छिपी हुई आत्माएं अभी भी है, फर्स्ट टाइमर वालों से भी कहा कि सब नहीं पहुंचे है, कुछ कुछ नहीं पहुंचे है, तो नए नए प्लान बनाओ, नया उमंग हो, ये सब पर मुरली इसी पे तो चली ना, तीन बातों पर, एक तो मिलन के बारे में कहा, एक सेवाओं के लिए कहा और एक पुरुषार्थ के लिए, दो तीन पॉइंट थे। तो ये था चौथा। पांचवा
रहमदेव,
विश्व कल्याणकारी अर्थात रहमदेव, विश्व कल्याणकारी अर्थात दाता, विश्व कल्याणकारी अर्थात विश्व राज्य अधिकारी, विश्व कल्याणकारी अर्थात मास्टर दक्षता, विश्व कल्याणकारी अर्थात महादानी, विश्व कल्याणकारी अर्थात मास्टर सर्वशक्ति, ये सारे पॉइंट। तो उसमें इस प्रकार की जो भी आत्मा है, जो कि कम बुद्धि है, पत्थर बुद्धि है, ग्लानी करने वाली है, अवगुण वाली आत्मा है, इस तरह की जो भी आत्मा होगी, कड़े संस्कार वाली आत्मा है,
किसी भी प्रकार की कमजोरी वाली,
कमजोरी वाली, बुराई वाली, पतित, अज्ञानी, अवगुणधारी और पुरुषार्थहीन। नहीं, हम ये चर्चा कर रहे थे कि पुरुषार्थ जिनका, हमारा पुरुषार्थ जब बढ़ता है तो जो पुरुषार्थ नहीं करते उनके प्रति एक सूक्ष्म घृणा उत्पन्न होती है, वो भी उत्पन्न ना हो, जो अमृत वेला करते ही नहीं कभी और फिर हमको ही ज्ञान सुनाते दिन में, अभी क्या करे उनके लिए बोलो,
बोला
अमृत वेला करते हैं ना, तो सेवा में टाइम से नहीं आते, कोई भी काम दो तो उसमें गड़बड़ करते हैं, कोई भी काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं करते, कोई नया ग्रुप आ जाए तो उनको ऐसी कुछ बात सुना देते कि वो ग्रुप ही डिस्टर्ब हो जाता है, या नई कोई आत्मा आ जाए उनके साथ ऐसे बोल बोल देते हैं कि वो घायल हो जाते, जहां जाते हैं दो तीन आत्माएं घायल क्या करे इनके प्रति, क्या करे
उनके प्रति सुधारना है,
तो वही तो बोल रहे हैं वही तो, जो पुरुषार्थहीन आत्माएं हैं, पुरुषार्थ का जिनके जिनके जीवन में पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं है, पर जब दादियों का क्लास होता है तो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि दादी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कैसे करें, योग का चार्ट 8 घंटा कैसे करें, ऐसे सच इस टाइप के प्रश्न पूछते हैं जिनको अंदर से पुरुषार्थ से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रश्न मेरा प्रश्न वहां ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्न क्या है उत्तर क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, वो भावना नहीं है, प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा प्रश्न महत्वपूर्ण है, मैंने पूछा ये महत्वपूर्ण है, भले उसका उत्तर किसी और के प्रश्न ने 2 मिनट पहले जो उत्तर दिया था उसमें था उसका उत्तर, परंतु यहाँ मेरा प्रश्न आ जाता है ना, मैं भी सब कुछ, मैं ही सब कुछ हूँ, बोला ना अहम अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ, बाकी और कोई कुछ नहीं है। तो इधर ज्ञानी भाई, ज्ञानी योगी तपस्वी और पुरुषार्थी आत्माएं कौन कौन सी है उनके प्रति?
अपने भाई हैं।
नहीं नहीं, और क्या क्या है, मतलब क्या क्या करती है वो? तो उनके प्रति शुभ भावना रखे, क्या करती है? एक तो अमृत वेला नहीं, दूसरा ज्ञान का कोई चिंतन मनन कुछ नहीं,
खाना अच्छा अच्छा बनाते
हैं, हाँ खाने में लगे हुए रोज,
उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो तो करते हैं कुछ नहीं करता, लेकिन एक विशेषता तो है भगवान को पूछा।
तीन विशेषता है, एक क्यों तीन इंटरनेशनल विशेषता है सब में, सार्वजनिक सामान्य विशेषता, एक तो भगवान को पहचान लिया, दूसरा संपूर्ण पवित्रता को धारण किए और अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमात्मा के लिए समर्पित किया है, ये तीन विशेषता सब में है, मधुबन निवासी जो भी है सब में, इस विशेषता से वो महान है, बाकी फिर उनमें जो भी है वो छोड़ दो, वो अंदर का जो भी है पुरुष, अमृत वेला उठता है नहीं उठता है, मुद्दी सुनता है नहीं सुनता है, सेवा ठीक से करता है नहीं करता है, और फिर कौन कौन से इंटरेस्ट है, घूमने फिरने का इंटरेस्ट ज्यादा है, अभी अभी घूम के नहीं आए तो अगली जगह जाने का प्लानिंग, अभी आए ही नहीं तो आगे की प्लानिंग चालू है कहाँ जाना है नाम सेवाओं का ही होता है ब्राह्मणों के इसमें। नाम तो सेवाओं के ऊपर से जो भी होता है सब इसी तरह की चर्चा होती है, सेवा ये तरह की, अंदर से कुछ और वो तो ठीक है वही कहा ना, अंदर से दिखाने का कुछ, बाहर से कुछ और, अंदर से सूक्ष्म इच्छाएं बहुत सारी है, पर ये तो जैसे खुद को ही धोखा देना है ना, वो जैसे एक उदाहरण दिया था ना, एक व्यक्ति ताश खेल रहा है दो, पर दोनों तरफ से वही खेल रहा है, इधर से भी वही है उधर से भी वही है, पर बेईमानी कर रहा है, कोई पूछता है अगर कोई हम दूसरे से दगाबाजी करे, दूसरों से बेईमानी करे तो कोर्ट है, वकील है, अदालत है, पुलिस है, पर जो व्यक्ति खुद ही को धोखा दे उसके लिए क्या है? तो ये व्यक्ति खेल रहा है, उसको कोई पूछता है अरे तुम बेईमानी कर रहे हो, वो कहता है मुझे पता है, अभी क्या किया जा सकता है, दो दो तरफ से अगर खेले और उसमें भी वो चीटिंग करे, सेल्फ चीटिंग, तो ये ऐसा ही हो गया ना सेल्फ चीटिंग। तो जो पुरुषार्थ इस तरह से जो पुरुषार्थ वो खुद को ही एक रीति से ठग रहे हैं, हमारा उनको कुछ कहना नहीं है, हमारा तो बस उनके प्रति शुभ भावना है, ठीक है, कोई झूठ ही बोलता है सीधा सीधा झूठ बोलता है, अब क्या करें, एकदम झूठ सीधा सीधा झूठ, पूरा सरासर झूठ जिसको कहते हैं,
तो फिर
वो सब कहाँ याद आता है उस समय,
इसमें अपने सत्यता पर विश्वास,
वो तो थियरी है सारी है, अपकारी को ये शब्द है खाली, अलंकारिक भाषा है बाबा की, शब्द ऐसे अच्छे अच्छे शब्द है, उसमें अच्छे अच्छे उदाहरण है, वो खाली यहाँ चर्चा करते समय जब शांति है, जब तूफान हो तब ये सब थोड़ी उड़ जाता है, क्या कोई क्रोध बहुत क्रोध कर रहा है उसको हम क्रोध से मुक्त कराने जाते हैं, उसको सिखाने जाते हैं, शिक्षा देने जाते हैं, और उसका जब क्रोध नहीं छूटता है तो हमको ही गुस्सा आता है, आपको कितना समझाओ, और 10 दिन से सिखा रहा हूँ क्रोध से वैसे मुक्त हो, और अभी तक क्रोध तुम्हारा जाता नहीं, तो वही वाली बात हो गई ना, फिर यार दूसरे का क्रोध छुड़ाने हम जा रहे हैं और हम ही क्रोधित हो रहे हैं कि उसका क्रोध नहीं छूट रहा है, तो अभी किसको क्या करें, ऐसी स्थिति है आत्मा की, शांति ना दो। तो ये जो अवस्था है आत्मा पहले स्वयं भरपूर होगा होना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहला पुरुषार्थ है खुद को शुभ भावनाओं से बहुत भरना, एक बात बार बार दिखाई पड़ती है कि हमारा शुभ भावना का स्टॉक कम है, हम केवल चर्चाएं करते हैं शुभ भावनाओं की, पर हमारे अंतरिक्ष शुभ भावनाएं कम हो जाती है, जब हम योग में बैठे हैं किसी का मोबाइल बजता है तो हमारी शुभ भावनाएं कम हो जाती है उसके प्रति तुरंत, कोई हम योग में बैठे जोर से कोई दरवाजा बंद करके जाता है या आता है तो आवाज करता है तो शुभ भावनाएं कम हो जाती है, रोज रोज उसको रोज कहो फिर भी कहता है, कोई रोज ही सोता है, एक दिन सोया ठीक है योग में, दो दिन ठीक है, चार दिन ठीक है, पर रोज ही आके सोना नियमित चाहे मुरली चाहे योग, तो उसमें फिर अशुभ भावनाएं कम होती है, तो हमें ऐसा क्या करे कि हमारी शुभ भावनाएं आत्माएं जो कर रही है उसके ऊपर निर्भर ना करे। हमारी शुभ भावना इसके लिए रखने की बाबा ने कहा है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखो, चाहे कोई कुछ भी करे, करने दो जिसको जो करना है। फॉर माय सेक पवित्र बनो बस मेरे खातिर, मेरे लिए बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, फॉर माय सेक, केवल मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए तन। तो ये था, तो कहाँ थे हम, रहन, लॉफुल और लवफुल बनो ऐसी आत्माओं के प्रति बाबा ने कहा। और फिर आगे क्या कहा, पर तू दो बातें हो जाती है, एक वहम और एक अहम। वहम में क्या क्या, ये कभी बदल नहीं सकती है, कभी सुधरेंगी नहीं सकती, ये 10 साल से देख रहे हैं,
ऐसा ही है
10 साल से देख रहे हैं, आज तक कभी दिखा नहीं अमृत वेला,
राजा बनेंगे भी नहीं,
तो वो तो हम अपने आप को बताने के लिए। तो और क्या क्या कहते हैं, ये बदलेगी नहीं, ड्रामा में ये राजा सब राजा बनने वाले नहीं है। तो हमको स्टैंप नहीं लगाना है, किसी को ये ना कहो कि तुम कमजोर हो, आगे कहा ना बाबा ने, कोई कमजोर आत्मा है, पता है वो कमजोर है, वो खुद भी जानती है हम वो कमजोर है, उसको नहीं इतना कर नहीं सकती है सेवा। हमने किसी को सेवा दे दी, भाई तुम ये 4 काम करने हैं, हमको पहले ही पता है इसकी इतनी क्या कहते कुवत कैपेसिटी नहीं है इतनी करे, पर फिर भी हमने जबरदस्ती दी जानबूझ कर, उसमें भी प्रत्येक हमारा अहंकार एक समाया रहता है ना अंदर कि हम ये कहेंगे वो करना ही है उसको, जबकि पता है वो नहीं कर सकता है, उसमें उतनी बुद्धि भी नहीं है वो करने की। तो ये जो है ये सब वहम है, बाबा कभी स्टैंप नहीं लगाता है ना, बाबा को पता नहीं कौन कौन कहाँ है, हाँ बाबा कभी कहता है पिछली बार होमवर्क ये दिया था, हाँ कितनी बार हाथ को खड़ा किया था, 10-12 बार हाथ उठाया था, अगली बार कुछ नहीं भूल गए, चर्चा ही नहीं उसकी, नहीं मुदली, क्योंकि वो अगर ऐसा कहे कि जिसने होमवर्क किया है बस वही हॉल में रहेंगे बाकी आउट, तो क्या हो जाएगा, उसको भी लगेगा मैंने क्या कह दिया, हॉल ही खाली हो गया, मेरी ऑडियंस कहाँ है अब। तो पर बाबा कभी किसी को ऐसा डायरेक्ट कभी कुछ नहीं देते, बाबा हल्का रहता है वो, उसके पीछे और भी एक सूक्ष्म कारण है, अगर वो ऐसा होने लगे तो उसकी स्थिति डगमग हो जाए कि तुमने किया क्यों नहीं, मैंने तुमको बोला था ना, तो खराब तो लगता है ना ऐसे बोलने वाले, करना चाहिए था ना तुमको, थोड़ा तो नाराजगी होती है ना,
इसलिए बाबा ऐसे कोई बात बता रहे थे, मतलब फिलोसफर भाग अपने आप में कह रहे हैं मुख के सामने के प्रमोद, मतलब संकल्प में भी नहीं है।
और जब हाथ खड़े करते तब बाबा अंदर से हंसता होगा, देखो मैं पूछ के आ रहा हूँ, इनको समझ भी रहा है क्या किस लिए हाथ खड़े। कोई कोई बाबा कहते नए साल की, बाबा ने एक बार पूछा था नए साल की प्लानिंग किसने किसने की, सब माताओं ने हाथ खड़े कर दिए, अभी क्या उनको समझ में आया होगा, कोई कोई दो दो हाथ खड़े कर रहे है, क्या प्लानिंग की है, कुछ ने कुछ प्लानिंग भी नहीं, कुछ नहीं की है, ऐसे ही बस, किसी को ये भी नहीं पता चल रहा था हाथ किस लिए खड़ा करना है, सब खड़ा कर रहे, भीड़ खड़ा कर दी, हम भी करेंगे, मॉब मेंटेलिटी।
लेकिन कई बार हाथ खड़ा नहीं करते तो बाबा फिर पीछे पड़ता है,
बाबा ने उसके लिए भी कहा है, पर उसके भी मार्क्स है, बाबा ने कहा ये यहाँ खड़े हुए तो वो शक्ति भरेगी,
तो जब हाथ उठवाए थे तब भी बोला था ना कि हाथ उठाते हो तो क्या बोला था,
जो नहीं उठाते
नहीं, नहीं वो 11वीं बार वो नहीं, उसी में अंदर है जो हाथ उठाते हैं तो माना कुछ अंडरस्टैंडिंग की बात कही,
नहीं उसको बाबा ने कहा हाथ उठाते हो इतनी बड़ी सभा में तो कभी न कभी आपको याद आएगी हमने सामने हाथ उठाया,
किसके सामने हाथ उठाए, सामने कौन था, कौन सी सभा थी, कौन सी प्रजा थी। तो अहम और वहम, बाबा ने कहा वहम जो है वो वहम जो रहम को खत्म कर देता है, वहम जो है वो रहम दिल बनने नहीं देता, दोनों बातें कही। तो फिर सभी आत्माओं के प्रति कैसा, फिर बाबा ने अपना उदाहरण दिया ना, जैसे बाप क्या करता है, कोई भी आत्माओं को क्षमा कर देता है, कमजोरियों को देखते हुए, बुराइयों को देखते हुए समा लेता है, दिल में नहीं रखता, वैसे तुमको भी समा लेना है, दिल में नहीं रखना। तो ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप फिर उनकी महिमा करनी है, जो भी आत्मा है उनको कैसे देखना, वास्तविक स्वरूप में देखना, उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना,
राजपूत का उदाहरण दिया,
फिर राजपूत उनको अपने उनको याद दिलाना, क्या याद दिलाना,
तुम तो
किस वन के नहीं किसके बच्चे हो संकित कुल के हो संगम युग की प्राप्ति और वरदान क्या है ये उनको याद दिलाना। हाँ फिर तुम राजवंशी तुम ब्रह्मवंशी श्रेष्ठ आत्माएं तो ये महिमा करते 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 उनके जो अवगुण है वो स्वतः ही समर्थ बना के ये अवगुण विस्मृत हो जाएंगे मिट जाएंगे। फिर वो राजपूत का भी उदाहरण दिया अगर किसी राजपूत को ये याद दिला जाए कि भाई तुम्हारा तो वंश महाराणा प्रताप है तो उसमें भी थोड़ा पावर भर जाएगी ना तो ये सुनाएंगे तो उसमें पावर भर जाएगी हिम्मत ही इनमें हिम्मत आ जाएगी। तो वैसे तुम भी जैसे फिर डॉक्टर का भी उदाहरण दिया क्या उदाहरण दिया
डॉक्टर कह देते
तुम तो ठीक नहीं मरने वाले हो ठीक नहीं हो ठीक होने वो भी ठीक है ये मरने की बात थी तो पहले हार्ट फेल गए तो तुम महान आत्मा श्रेष्ठ आत्माओं के मुख से सदा शुभ बोध निकले दिल शिकस्त वाले नहीं
दिल
शिकस्त होना भी हार्ट फेल होना है।
भगवान ने बोले ऐसे तुम ब्राह्मण भी किसी आत्मा को कमजोर आत्मा
ऐसे नहीं बोल सकते कुवचन कुदृष्टि कुकर्म कुकर्म और विकर्म में क्या अंतर कुकर्म अर्थात काम विकार से संबंधित है काम से संबंधित जो है वो कुकर्म है विकर्म में सारे पाप आ जाते
हैं
वो सारे पाप न्यूज पेपर में कुकर्म शब्द काम विकार के लिए यूज करते हैं। अच्छा फिर तो ये फर्स्ट स्टेप था क्षमा कर दिया सेकंड स्टेप था महिमा गाई और थर्ड स्टेप फिर इशारा और शिक्षा देना वही उदाहरण दिया पहले हल चलाओ उत्साह और मुम्मत का कल राठी जमीन पर तो उससे सफलता भी ज्यादा समय भी कम अगर ऐसा करते हो तो नहीं तो सफलता कम मेहनत ज्यादा समय भी ज्यादा तो ये तीन स्टेप्स है और बाबा स्वयं इसका उदाहरण है उसका वो जो है वो स्वयं ये वो जो बोल रहा है ना वो तो केवल शब्दों में अभिव्यक्त कर रहा है उसके स्वरूप को शब्दों में इतनी पावर भी नहीं है वो जो बोलता है वो बताने के लिए शब्द भी लड़खड़ा रहे हैं कैसे उसके भाव को व्यक्त करे तो वो उसका वो स्वरूप है। फिर क्या कहा नई पार्टियां नहीं इधर है और दो तीन और भी होने पर बाबा ने कहा ना अगले सीजन तक बाबा क्या क्या देखना चाहते हैं ताज तख्त और तिलक सभी स्टेज और स्पीड अभी तुम्हारी मध्यम है तो तीव्र चाहिए मध्यम है तीव्र चाहिए तो स्पीड और स्टेज भी कैसी चाहिए एक दूसरे की एक दूसरे श्रेष्ठ और सुंदर क्योंकि किसी को निमंत्रण देते हैं तो स्टेज तैयार करते हैं ना तो बाबा यहाँ स्टेज देखना चाहते फर्स्ट डिवीजन में सभा है सभी तीव्र पुरुषार्थी हो ताज तख्त और तिलक ऐसी सभा में आना चाहते जो यहाँ राज्य अधिकारी है तो वहाँ राज्य दरबार में होंगे राज्य दरबार ये भी पॉइंट थी वहाँ पर
जैसे
एक दो से आगे का श्रेष्ठ और सुंदर स्टेज हो बाबा ऐसा स्टेज देखना चाहते ये यहाँ मुरलीपुरी उसके बाद में फर्स्ट पार्टियों से मुलाकात क्या कहा मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर रचता हम सब कौन है स्वस्थिति क्या है रचता और परिस्थिति क्या है रचना परिस्थिति रचता है क्योंकि वो प्रकृति से उत्पन्न है वो रचना है ये रचता है स्वस्थिति तो रचता हमेशा रचना से श्रेष्ठ हो तो बाबा ने कहा ये जो मास्टर रचता इस सीट पर सेट रहो इससे उतरना नहीं नीचे फिर ये उतरने के ऊपर सारी मुरली है नीचे कौन सी नीचे क्या है माया की धूल देहाभिमान माया की धूल है हाँ तो बच्चे को भी जो होते है ना ध्यान रखा जाता है कि वो पैर नीचे ना रखे उसको गोद वो दूसरा पॉइंट है गोदी वाला गोद में रखना याद की गोद एक तो सीट से नीचे उतरना नहीं और याद की गोद से नीचे उतरना नहीं और जो सदा ही देहभान में और मिट्टी से खेलते देहभान में रहते उनके लिए बाबा ने क्या कहा वो जैसे मिट्टी खाते हैं और खेलते हैं मिट्टी से क्यों प्यार है इतना मिट्टी से क्या है कुछ तो होगा उस मिट्टी में जन्म जन्म से मिट्टी अच्छी लगती है नरम होती है, सुगंध भी आता है उससे, और क्या होता है, देखो मिट्टी अच्छी लगती है, मिट्टी में खेलना कूदना सोना, मिट्टी अच्छी लगती है, सॉइल कॉन्शियसनेस। ये जो है मिट्टी,
मेरे पास आए थे सेवा में, वो गेहूं मैंने काली काली जो मिट्टी है उठा उठा कर
खाती थी,
कैल्शियम
कम होता है।
तो यहाँ बाबा ये देह को मिट्टी कह रहे हैं, पता नहीं है कौन सा अज्ञात आकर्षण है इसमें जो आत्मा को छोड़ता ही नहीं। बाबा कहने बार 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 देह खींचता है, इसके लिए देह खींचता है उसको। बाबा सीट, बाबा ने कहा सीट से नीचे नहीं आओ, एक तो मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट में, सीट में उससे नीचे, दूसरा कहा याद एक गोद है, इस गोद से नीचे नहीं आओ। जैसे लाडले बच्चे होते हैं उनको गोद नीचे नहीं आने देते, जो मिट्टी से खेलते हैं वो, बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट कहा, बाप के बच्चे नहीं हो सकते, जो मिट्टी से खेलते हैं वो बाप के बच्चे नहीं होते। रॉयल बाप के बच्चे मिट्टी से नहीं खेल सकते, किससे खेलेंगे, ज्ञान रत्नों से खेलो।
वो असंभव वाली बात है,
आगे
असंभव को भी
संभव करने वाला है, यही है
ये उसके साथ था, जहाँ पे स्टेज तैयार करते
हो वहाँ उस स्टेज के पास
असंभव।
तो ये था मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर रचता की स्टेज, या सदा बाप की गोद में रहना, याद की गोद में रहना, ये फर्स्ट। उड़ीसा वालों का तो हमने कर लिया, उड़ीसा के लिए वृद्धि कर रहे हैं सेवाओं की, ये विस्तार कर रहे हो तो खुशी होगी, यहाँ भी प्राप्ति और वहाँ वहाँ भी राजपद। तो वर्तमान और भविष्य दोनों श्रेष्ठ है। फिर कहा यही सबसे बड़ा बिजनेस है, फिर कहा यही सबसे बड़ी बड़ी लॉटरी है, फिर वो दुख वाली पॉइंट है जो स्वर्ग की हमने शुरुआत में जो चर्चा की, दुख का कारण क्या है, मोह और लगाव। स्वर्ग अर्थात सुख के द्वार खुल जाना, तो रोना बंद, तो सदा खुशी में अपने भाग्य के गुणगान करते रहो। आपका खुशी का चेहरा अगर कोई देखेगा तो खुश को देखेगा तो स्वयं भी खुश हो जाएगा और बाप के समीप आएगा। खुशी का चेहरा ही बाप की पहचान है, बाप की पहचान देता है। ये था फिर उसके बाद में तीसरा पार्टी, थर्ड पार्टी,
महावीर
अर्थात दो परिभाषा दी, एक तो सारे शस्त्र उसके पास और हर घड़ी अटेंशन, ज्ञान के अस्त्र, जैसी परिस्थिति जैसा समय उस अनुसार उसको यूज करो, ऐसे नहीं कि है पर यूज नहीं कर सकते। विजयी मतलब विजयी अर्थात हर घड़ी विजयी, ऐसा नहीं कि एक घंटा लग जाए विजय बनने में, सेकंड में विजयी। अगर एक घंटा लग गया और उसमें अगर अंतिम घड़ी आ गई तो क्या पद पाओगे। इसके लिए महावीर अर्थात हर घड़ी अटेंशन, वो फर्स्ट पार्टी के समय पे। और एक लास्ट पैराग्राफ है ना छोटा, जो साथ के लिए कहा है बाबा ने, बाप का जो सदा साथ है वो सदा निर्विघ्न है, सदा निर्भय है, माया जीत है, सदा विजयी है। लास्ट पैराग्राफ वो वर्धन 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 लास्ट पैराग्राफ टीचर से मुलाकात हो गया ना, हो गया हो गया। वरदान बहुत बढ़िया है, जो एकदम महान कवि होते हैं ना वो ऐसी कल्पनाएं करते हैं, ये चीज को उस चीज के साथ कल्पना करते हैं। राइमिंग तो रहता ही है पर कल्पना मतलब ये चीज कैसी है उसके जैसी है, ये कैसा है वो चांद जैसे अभी अभी निकला है उसके जैसी है। तो बाबा ने ये जो कल्पना जो दी है ना आज, बहुत ही पावरफुल है। जैसे मूर्ति को बनाना, फिर उसकी पूजा करना और उसको डुबोना, यह है गुड्डे गुड़ियों का खेल। हमको कौन सा खेल करना है, हमारी क्लास में एक भाई कह रहा था उस दिन, था ना मानवप्रस्थी बन जाओ, गुड़ियों का खेल बंद करो। तो यह है गुड्डे गुड़ियों का खेल, तुमको कौन सा करना है, बुड्ढे गुड़ियों का। मानवप्रस्थी था ना उस दिन बाबा ने कहा ना ये गुड्डे गुड़ियों का खेल बंद करो, तुमको तो अभी वानप्रस्थी बनना है। वानप्रस्थी अर्थात निरंतर एकांत और एक के सिमरन में रहना। तो बुड्ढे गुड़ियों का खेल हो गया ना। तो ये मूर्ति बनाना, मूर्ति की पूजा करना और फिर अंत में इसको डुबोना। तो तुम क्या करते हो, जो असार बातें हैं वो असार बातें, जो कौन सी बातें, तीन बातें बताई ना, ईर्ष्या द्वेष और आवेश, ईर्ष्या और क्या कहते अनुमान, ये जो बातें असार बातें निर्जीव बात है, इसमें तुम क्या प्राण प्रतिष्ठा करते हो? मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना, बाबा कहते हैं उसमें निर्जीव है, उसको सजीव बनाते हो। तो सबसे पहले तो मूर्ति तैयार करना, ये जो आसार बातें हैं कैसे करते हो प्राण प्रतिष्ठा? अपने अनुभव को सुनाकर, सुनाते कहते यही सत्य है ये कहते हुए, तो उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, प्राण भरते हो मतलब उसको जीवंत करते हो, और फिर उसको डुबोने जाते कहाँ पर? ज्ञान सागर के पास, ज्ञान सागर की याद, स्व उन्नति की लहरें और बीती सो बीती में उसको डुबोते हो। ये उदाहरण दिया किस लिए बाबा ने? मतलब ये एब्स्ट्रैक्ट चीज है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जिसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। एयर इन नथिंग, शेक्सपियर अपनी इसमें लिखता है, एयर इन नथिंग को एक जैसे विजिबल, एक दृश्यमान, एक घर देना, जो दिखता नहीं है उसको घर देना, ऐसी वस्तु। तो ये जो कल्पना जो दी है ना बाबा ने, ये जो है एब्स्ट्रैक्ट है ये। इसका क्या मतलब? व्यर्थ की बातों का विस्तार करना, उसको सत्य मानना, और फिर उसको बाबा से योग लगा के उसको समाप्त करता, ये एब्स्ट्रैक्ट है। उसको बाबा ने एक दूसरा उदाहरण दिया, ये कवि कर सकते हैं ये सब बात। टू गिव टू एयर इन नथिंग अ विजिबल होम, तो मूर्ति बनाना, पूजा करना और उसको डुबाना, मतलब अपने अंदर ही बहुत सारा व्यर्थ उत्पन्न करना पहले। कौन सी तीन बातें बोली हो? तो एक तो आवेश, पहले बहुत आवेश में आ जाना, फिर उसका वर्णन करना या उसको सत्य मानना, उसके जो भी करना है, फिर उसको बाप की याद से, उसको तीव्र पुरुषार्थ से उसको समाप्त करना। वो आवेश फिर काम वासना का भी आवेश हो सकता है, वो क्रोध का भी आवेश हो सकता है। तो विकारों की प्रवेशता मतलब मूर्ति तैयार करना, फिर उनकी पालना करना मतलब उनकी पूजा करना, और फिर पुरुषार्थ करना, याद करना और संकल्प करना और प्रतिज्ञा करना और व्रत नियम लेके उसको समाप्त करना। बाबा ने कहा ये सब में टाइम जाता है। फिर मृत्यु सो समर्थि के वरदान से बुढ़ियों की खेल, ये जो खेल है इसको समाप्त करो। निरंतर स्मृति, निरंतर याद, निरंतर अटेंशन, महावीर की वही परिभाषा दी है। तो कितनी अच्छा ये है, बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। पर एक वरदान में एक उदाहरण उस दिन आया था, वो मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद ये गलत है, अभी आप बताओ वो कैसा है। उस दिन था ना, जितने कष्ट आएंगे तो बाप की याद बहुत आएगी। वहां पे बाबा ने कौन सा उदाहरण दिया, ये सही है कि गलत है? बाबा ने कहा गुलाब के फूल में कांटे होते हैं, वो सुरक्षा का साधन है। अभी बात कौन सी चल रही है? बहुत कष्ट आने की, दुख आने की, तकलीफ आने की। जितनी ज्यादा तकलीफ उसमें बाप की याद ज्यादा रहेगी। ये बात समझाने के लिए बाबा ने ये उदाहरण दिया कि गुलाब का फूल है उसमें कांटे है, वो कांटे सुरक्षा का साधन है। मैच नहीं होता है ना शायद, क्योंकि ये वरदान जो बनाते हैं वो यहाँ वहां से थोड़ा थोड़ा लेके बनाते हैं ना, वो शायद मुरली कौन सी है वो ढूंढनी पड़ेगी फिर, क्योंकि ये थोड़ा असंगत सा लगा। बाबा बोलेंगे सुप्रीम टीचर को भी सिखाते हो पोएट ऑफ पोएट, सुप्रीम पोएट
बच्चे किसके?
चतुर सुजान। तो ये आज की मुरली, सारे मुरली में से सोमान कौन कौन से है? पूरे सोमान। तो मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं संपन्न स्वरूप आत्मा। एक जगह ये भी बोला बहनों को महादानी और वरदानी स्वरूप में स्थित हो, बहन एक कौन सा नंबर लेगी पूछना ना, संपन्न स्वरूप, महादानी स्वरूप। तो मैं महादानी आत्मा हूँ, संपन्न स्वरूप आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, बेहद का दाता हूँ, विश्व राज्य अधिकारी हूँ,
डबल लाइट
मास्टर रचता हूँ, डबल लाइट हूँ, निमित्त हूँ, रहम दिल हूँ, वानप्रस्थी हूँ, महावीर हूँ, और वर्ल्ड सर्वेंट, समर्थ आत्मा हूँ, और उत्साह और उमंग का फल चलाने वाला रूहानी किसान हूँ किसानी चलाता है ना क्षमा, मैं क्षमाशील आत्मा हूँ, रहम दिल, क्षमाशील, रहम दिल। कुरान में अल्लाह को अल रहमान अल रहीम कहा हुआ है, अल रहमान अल रहीम मतलब जो दयानिधि, भारतीय संस्कृति उसको दयानिधान कहते हैं, हे दयानिधान, हे कृपा सिंधु, हे करुणा निधान, ये इस तरह की भाषा इधर भारतीय संस्कृति में, उधर इस्लाम में उसको अल रहमान अल रहीम कहा हुआ है।
वो आयत पर जो समय
आयत में है ये 48, आयत नंबर 48। इवन बाइबल में भी इस तरह के बहुत सारे वाक्य है कि भगवान कैसा है, वो क्षमा रहम दिल है, मर्सीफुल है, मोस्ट मर्सीफुल, मोस्ट मर्सीफुल जिसको कहते हैं, सबसे अधिक इनफिनाइट। और क्या, और कोई समान? अनिल भाई रुको, कोई तो कोई पॉइंट रह गई होगी अभी, और अनिल भाई बच्चा कुछ है लोगों हाँ क्या था मुझे याद नहीं सुन क्या करो समय पर मदद तो क्या हो जाएगा
नंबर आ गया
वो तो कल था
समय पर सहयोग दो तो
कल था वो ये हफ्ते के स्लोगन बहुत बार रिपीट हुए
जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पतंग फल मिल जाता है
और कुछ बोला आज हाँ और कोई सामान आज की मुरली से हाँ जैसे पूज्य आत्मा होती है ना वो भी क्षमा करती है देवता भक्तों को क्षमा करते हैं बाप बच्चों को क्षमा करते हैं
आपका पूज्य सामने जब भक्त जाते हैं तो आप उसको क्षमा करते हैं
वहाँ भी बताया ना ये तीनों संबंध तुम क्षमा करते एक तो बाप सम्मान दूसरा पूज्य और तीसरा मास्टर रचयिता मास्टर विश्व कल्याण हरी मास्टर अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिमान मास्टर रचयिता
मास्टर
ज्ञान सागर हूँ मैं
शिव कौन से ब्रह्मावंशी
ब्रह्मावंशी राजवंशी ये सब ऊंचे ऊंचे समान है बोले ये था आज का
आदि
आदि कल के राजवंश आदि चलो एक हफ्ते में कुछ पावरफुल पॉइंट
तुम्हें अविनाशी चीज को ही देखना चाहिए
तुम्हें विनाशी चीज को देखना क्या है अविनाशी चीज को ही देखना है कुछ
रावण
रावण चैतन्य होता तो क्या
करता
था रावण इधर आ गया होता और यहाँ के न्यूज़पेपर पढ़ता
लेकिन वो आता कैसे
नहीं वो आता कैसे शुरुआत
अट्टाहस कहते हैं अट्टाहस रावण यहाँ आता तो क्या क्या करता सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ता उसके 10 मुंह है ना एक एक हाथ में एक एक न्यूज़पेपर ऐसे ऐसे तो वो कहेगा मैंने तो एक सीता को चुराया था तुम मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया था तुम संसार के व्यक्तियों से क्या बात करता देखो मैंने धर्म नीति संगत युद्ध किया था और तुम ये सब देखता वो तुमने मुझे जन्म जन्म जलाया मैंने ये दो तीन चीजें की और तुम क्या क्या कर रहे हो तुमको तो रोज जलाना चाहिए उसके एक एक हाथ में एक एक न्यूज़पेपर एक में टाइम्स ऑफ इंडिया उसके 10 है ना इधर 10 इधर 10 कितना यहाँ के न्यूज पेपर में देखेगा वो क्या क्या हो रहा है
कितना मोबाइल
मैंने तो यही काम किए थे ऐसे ही मैंने फिर भी मरते समय राम का नाम लिया था मरते समय लक्ष्मण को बहुत सारी नीति की शिक्षाएं देकर गया था और तुम
ना फिर भी पंडिता ही किया
मैंने भले वो सब किया पर पहले मैंने क्या क्या अच्छे काम किए थे बहुत सारे वो बहुत बड़ा पंडित था ज्ञानी था ज्योतिषी था प्रकांड पंडित था वो तो
वो राक्षस नहीं था ब्राह्मण था
हाँ तो मैंने देखो ये सब भी किया है और मेरी तो मैं तो शापित था फिर भी मैं तो मुक्ति के लिए मैं तो चाहता था कि राम मुझे मारे वो उसके लिए मैंने किया था ये सारा और तुम तो रावण यदि चैतन्य होता तो बाबा ने तो दूसरी बात कही वो भी कहता कि मैं भी रामा के बंधन में बंधा है मान और ये चिंतन का विषय है कि रावण यदि रामायण से उठकर यहाँ आ जाए तो वो क्या क्या कहेगा
तो हमारे आगे चला जाएगा
वो बोलने का तुम मुझे इतना जलाते हो तुमको तो रोज जलाना चाहिए चलो और क्या बोला एक तो ये पॉइंट
सबसे बड़ा
मैं सबसे बड़ा मेहमान हूँ मैं बड़े से बड़ा मेहमान हूँ मैं ऊंचते ऊंच हूँ मैं गॉडफादर हूँ मैं पतित पावन हूँ उसी मुरली में कितने सारे बातें आई मैं उस दुनिया का मेहमान नहीं हूँ मैं इस दुनिया का मेहमान हूँ तुमको बहुत खातिर करनी चाहिए राहुल करने तुम्हारे देश में एक ओबामा आता तुम उसका इतना करते हो मेरा क्यों नहीं
ज्ञान यज्ञ बचा है रुद्र ज्ञान यज्ञ भवन ने बचा है इस यज्ञ में
आगे बोलो थोड़ा वो उतना नहीं छोड़ो
उसमें हम भी बैठे हुए हैं बाबा भी आया हुआ यज्ञ चल रहा है
आप आते हैं दैवी धर्म और श्रेष्ठ
कर्म दैवी धर्म और श्रेष्ठ कर्म
सिखलाने
और ध्रुव
और बाबा ने कहा जो 50% से अधिक
हाँ वो पिछले हफ्ते के जिसमें था वो पारद बुद्धि
तुम लाइट हाउस
चैतन्य लाइट हाउस। अच्छा चलो वरदान वाला बोल दो चैतन्य लाइट हाउस उसी में कहा था ना जैसे वो लाइट हाउस एक रंग किरने फैलाता वैसे तुम सर्व शक्तियों की किरने चार ओर फैलाते जिसमें आत्मा को रास्ता दिखता है।
उसमें बाबा ने ये कहा कि तुम्हें सदा स्मृति रहे कि मैं परम धाम से
मैं परम धाम से अवतरित आत्मा विश्व सेवार्थ अवतरित आत्मा तुम्हारे हर संकल्प और हर बोल में विश्व कल्याण समाय होता रहे तुम्हारा संकल्प।
और ये स्मृति चैतन्य
लाइट हाउस का काम करेगी ये वरदान थे। और हाँ एक घंटा याद किया तो लज्जा आनी चाहिए और चार घंटा याद किया तो लज्जा की मात्रा में कभी बहुत ज्यादा नहीं है। बाबा ने क्या कहा एक घंटा याद किया तो लज्जा आनी चाहिए और चार घंटा ज्यादा कमी नहीं है लज्जा में आनी तो चाहिए फिर भी।
जिन्हें जिसे दिन रात याद करना चाहिए उसे एक घंटा याद किया।
और क्या कहा
बोल में बाबा बाबा
ही होना तुम बस बाबा बाबा कहते हो
किसी को
पागल
नहीं
कहना किसी को
पागल
नहीं
हाँ मतलब कोई अंधा है तो हम थोड़ी ना कहते हैं ये अंधे है या कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा थोड़ी कहा
खुशखबरी सुनाकर
या कोई पागल है तो खुशखबरी सुनाओ
अगर खुशी में लाना यही तुम्हारा
श्रेष्ठ कर्तव्य है। और
स्नेह और सहयोग के अनुभव सुनाते हो शक्ति स्वरूप का
शक्ति रिपीट हुआ है स्लोगन कुछ दिन पहले भी था।
और भी था ना ऐसे ही
संजय भाई
अभिमान में आने के संबंध पहले से के संबंध ही याद आते हैं और बाप अभिमानी बनने से बाप की याद आती है।
आत्म अभिमान ये अविनाशी अभिमान है अविनाशी अभिमान है आत्म अभिमानी स्थिति जो ये अविनाशी अभिमान है आत्म अभिमान।
और बाबा ने कहा कि अगर तुम्हें ये सदा याद रहे कि हमें स्वयं भगवान पढ़ा कर विश्व का राज्य दिलाने के लिए पढ़ा रहा
वो नशे से तुमको वो शराब का नशा तुमको चढ़ता है ये क्यों नहीं पूछा ना
तो
तुम मेरे बनो तो मैं तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण कर दूंगा फिर किसी को पकड़ना नहीं है जाता है तो जाए यहाँ तो मर्जी पर बनना है पड़ता है इसके लिए जाता किसी को पकड़ोगे जो स्कूल का होगा जाएगा जाता है तो जाए
ब्राह्मण
अर्थात मर्जी ये भी आज की मुरली में पॉइंट है एक जगह ब्राह्मण अर्थात मर्जी। और एक हम और एक भूल गए टीचर से मुलाकात में मैं पन आया तो माया का गेट खुला निमित्त समझा तो माया का गेट बंद।
वो दारू का नशा नहीं करता वो तो धारणा की बात है बाबा ने कहा यहाँ तो।
और क्या था
वरदान एक कदम हिम्मत का बढ़ाओ तो
हजार कदम तुम्हारा एक मेरी हजार
इस सूक्ष्म रतन अभी रचते
हैं ये सूक्ष्म रतन अभी रचते हैं और
थोड़े टाइम के लिए
और आशीष भाई
सबके लिए सारे यूनिवर्स के लिए पढ़ाई एक ही है
ये नहीं वो कौन सा शब्द बाबा ने बोला ये क्या कौन क्या लिख दो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ स्पिरिचुअल इनकॉर्पोरियल गॉडफादर इस पर विचार सागर मंथन करो स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ इनकॉर्पोरियल गॉडफादर
क्योंकि बाहर में डॉक्टर ऑफ फिलोसफी का बहुत वो मिलता है डिग्रियां
डॉक्टर ऑफ फिलोसफी शास्त्रों के डॉक्टर बात है अविनाशी डॉक्टर रूहानी डॉक्टर
बाबा ने बोला कि शास्त्र के एग्जांपल नहीं देना चाहिए।
हाँ तुमको उसमें ज्यादा जाना नहीं है
जाओगे।
तुम अगर एक मिसाल दोगे तो वो दस निकालेंगे उनके पास पूरा श्लोक है आपके पास केवल मनमना भव तक ही है उसके आगे भी है मनमना भव मध्याची भक्ता माम नमस्करू ऐसे आगे है उसके मन मना पर मेरा मन तू तेरा मन मुझ में लगा मेरे चरणों में आ मुझे नमस्कार कर
नमस्कार
ये सब वाक्य उसमें तो वो सब तुम अपने अपने काम का निकाल रहे हो तो बाबा ने अच्छा कहा कि तुमको उसमें ज्यादा जाना नहीं है तुमको उसका नाम भी नहीं लेना है तो वादी शास्त्र वादी भयम कई लोग तो उसी में ही तो फेमस होते हैं मतलब वो झगड़ने का संस्कार जो पहले लड़ाकू स्वभाव था और अभी योगी बन गए साधु बन गए तपस्वी बन गए तो अभी शास्त्रों से लड़ते हैं वो लड़ने का स्वभाव सेम है शांतिनाथ सेम वो संस्कार अभी भी सेम चालू है। वो पहले हिंसा करते थे, अभी वो गांव में जाते और ढूंढते कोई है क्या शास्त्र की मेरे साथ शास्त्र करने वाला और अपने सिद्धांतों को इस सत्य सिद्ध करना। ये एक प्रकार की अहंकार की तृप्ति है कि हमने जो कहा वही राइट है, हमारे जो सिद्धांत है वो राइट है, किस शास्त्र में क्या गलत है और किस शास्त्र में क्या है इसी के लिए वो खड़े हुए हैं। उनको भगवान से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा कोई तुम्हारे पास आ गया और तुम उसको कोई शास्त्र की बात कहो कि गीता में ऐसा लिखा है तो बोलेंगे कहाँ लिखा है, किस पेज पर लिखा हुआ है। मुझे याद है मेरा अपना, जब मैं बहुत पहले फर्स्ट टाइम जब सेंटर गया तो मुझे कुछ पता नहीं था इसका क्या है। एक बहन कोर्स करा रही थी किसी भाई को तो मैं बैठ गया, वो उसको बता रही है ये भगवान है ऐसा है, गॉड इज लाइट, जीसस ने कहा है। तो मैंने पूछा कहाँ कहाँ है तो वो एकदम थिंक करता फिर मूड वो ऐसे देखने में मैं कहाँ कहाँ है। मैंने कहा पूछा उसको न्यू टेस्टामेंट में है या ओल्ड टेस्टामेंट में है। बाइबल में दो प्रकार दो टाइप ये है ना, दो पार्ट है बाइबल के, एक तो नया करार पुराना करार। नया करार अर्थात जिसमें जीसस क्राइस्ट का लाइफ है, पुराना करार अर्थात इब्राहिम से लेकर जीसस क्राइस्ट तक के पहले की सारी बातें जिसमें मोसेस नोआ और वो सारी डेविड वो सब कुछ है। तो मैंने उसे पूछा कहाँ है आप बताओ मुझे, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट में तो है ही नहीं ये बात, गॉड इज लाइट हम बताते हैं ना कोर्स कराते समय, ये बात है ओल्ड टेस्टामेंट की जो मोसेस को कहे, मोसेस के ओल्ड टेस्टामेंट में आता है जब मोसेस को प्रकाश दिखा झाड़ियों के पीछे। तो ये जो है ना तब मुझे ये कुछ पता नहीं था, तो मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था उसको पता है कि नहीं ये बात करने जानने के लिए तो वो तो उन्हें बाद में बताऊंगी पूछ के बताऊंगी कल छोड़ दिया छोड़ो जाने, इसमें ज्यादा जाना नहीं है, तुमको पता है तो जाओ नहीं तो छोड़ो, क्योंकि तुम एक निकालोगे तो दस मिसाल निकालेंगे। तो चलो यही पूरा करते हैं, ओम शांति।